कैसे हैं आप?
सलामकुम, आइए यहाँ थोड़ा सा आराम कर लीजिए।
कूदते वक्त बहुत आराम से अपने हाथों को खोलें और खूब चिल्लाएं। हाँ, इसे मैं तुम्हारे लिए फिट कर देता हूँ।
फिर कूदने का ख्याल आएगा?
कूदूंगी।
चादर पहन के नहीं हो सकता, तुम्हें इसे उतारना होगा, कानून है।
खवातीन तो नहीं कूद सकती।
नहीं माँ, ये तो बड़ा फुजूल सा मजाक था,
तुम्हारी हिम्मत देखना चाहता था।
बहुत बुरे हो।
अब देखो नीमा साहब क्या करते हैं।
जाओ शाबाश, मजा करो।
हाँ हाँ
जाओ।
काश तुम भी कूद पाती।
नीमा कुछ ना कहो, अगर इजाजत देते तो मैं कूद जाती।
कूद जाती?
हाँ।
डर के मारे हार्ट फेल हो रहा था तुम्हारा।
हार्ट फेल समझो, मैं डर गई थी।
नहीं तो? डरी थी
नहीं
तो अब कूद जाएं।
कूद जाएं?
कूद जाएंगे।
जो ना कूदे तो?
कूद जाएंगे।
हाँ।
पाँच,
ये क्या कर रहे हो?
चार, कूद रहे ना?
इसे क्यों छोड़ दिया?
तीन,
नीमा को के लिए अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। नीमा इस टाइम पकड़ो, अरे मैंने झूठ कहा। नीमा प्लीज मेरी बात मानो। हेलो अबू।
सारा बेटी कहाँ हो?
सलाम अलैकुम, इंतजार कर रही हूँ कि दवाएं पहुँच जाए। आप कहाँ हैं?
वर्कशॉप के करीब वाले अस्पताल में।
यहाँ एक औरत दर्द से तड़प रही है।
ठीक है, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ।
तो फिर जल्दी करो।
मुझे देर हो गई।
मैं पहुँचा दूंगा।
नहीं पहुँच पाएंगे।
मैं पहुँचा दूंगा।
ड्राइविंग अच्छी है? हाँ।
जो न डरे उसकी ड्राइविंग अच्छी होती है।
मैं एक्सीडेंट से डरती हूँ।
एक्सीडेंट हमेशा बुरा नहीं होता। तुम भूल गई किस तरह मुझसे मुतारिफ हुई थी?
तुम्हें किस्मत और तकदीर पर एतकाद है?
मुझे कजा और कदर पर ज्यादा एतकाद है।
सच कह रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ।
मैंने ये सीखा है कि अपनी तकदीर और अपनी किस्मत खुद लिखूं।
पहला इख्तलाफ, मुझे किस्मत पर एतकाद है
और मुझे अपने आप पर एतमाद है।
खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
है
बस यही।
इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
वालेकुम सलाम।
कहाँ हूँ?
मेडिकल स्टोर में।
मेडिकल स्टोर में कहाँ?
अभी अभी उनका इंजेक्शन पहुंचा है, उनके पास नहीं था, दूसरी जगह से उनके लिए भेजा गया।
तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही हो?
आप कहाँ हैं?
ड्रग स्टोर के सामने। तुम कहाँ हो?
मैंने दूसरी जगह से दवाई ली है, बस अस्पताल पहुंच रही हूँ।
तुम समझ रही हो क्या कह रही हो?
प्लीज जल्दी करो।
ठीक है।
सीपीआर कहाँ है?
लेफ्ट साइड में।
अबूजान, अबूजान, अस्सलाम वालेकुम, ले आई।
आ गई। उस बेचारी की हालत बड़ी खराब है बेटी।
उसकी तबीयत कैसी है?
बस खुदा उस पर रहम करे।
अरे फातिमा, तुम भी दवा ले आई? माफ करना, अबू ने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए, मैं इतनी बौखला गई हूँ। ठीक है, भूल गई। मैंने तुम्हें मक्खन लगाने का मौका नहीं दिया ना।
मैंने तुम्हें फोन किया था।
अफसोस हुआ तुम पर। मुझे अबू की नजर गिराने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ना हो पाया।
आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कर यार?
अम्मी जान धीरे धीरे
जाओ, दवाई लेकर आओ।
जी अभी लाता हूँ।
अब्बू।
हाँ बेटी।
अगर कुछ काम ना हो तो मैं जाऊँ?
ठीक है, जरा रुको, फातिमा भी तुम्हारे साथ जाएगी।
नहीं, मैं रात को अम्मी के पास रुकूंगी।
खुदा हाफिज।
यावर, जाओ इन दवाओं को हौज में डाल दो, जाओ।
अबू जान।
क्या बेटी? जरा रुको तो, यहाँ की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है?
घर की चाबी घर के मालिक के पास होती है।
यहाँ का सिर्फ एक ही मालिक है और वो हाजी साहब है।
हाजी साहब? क्या आपने इन लोगों को नहीं बताया कि इस जगह को बेच चुके हैं?
बेच दिया?
जाओ अपना काम करो, दवाएं खराब हो जाएंगी। चलो जाओ। तुम भी यावर किम्मी के पास जाओ।
लेकिन अबू जान।
जाओ। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो मामले के लिए अपना वकील नहीं भेजता।
अलबत्ता अगले दो दिन में ये सूरत हाल खत्म हो जाएगी। इस काम के बारे में बताइए, अच्छा है बुरा है, उसकी आमदनी कैसी है?
इस काम के लिए किसी माहिर की जरूरत है बच्चे, हर कोई नहीं कर सकता।
अच्छा तो मतलब है मुझे किसी माहिर को ढूंढ।
क्या मुझ पर तंस कर रहे हो?
मेरे अलावा और कितने खरीदार थे? इस मुश्किल दौर में इस जगह कोई आपसे मुफ्त भी नहीं खरीदता। मैंने आप पर मेहरबानी की हाजी साहब, आपकी दस्तगीरी की है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े हुए।
बड़ी मेहरबानी की तुमने मुझ पर, ये सब किस लिए कर रहे हो?
इंसानियत भी, मेरे अबू से आपकी शनासाई भी, और फिर सारा साहिबा भी तो है।
मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, जाओ बच्चे।
बचपन से ही मेरे साथ ऐसा था, मैंने शहद भरी उंगली भी अगर किसी के मुंह में डाली तो उसने काट लिया।
इस जगह की तुम्हारी औकात नहीं, इस जगह की एक एक इंच के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। जाओ अपने पैसे कहीं और खर्च करो, जाओ।
इतने अरसे से बाजार में, लेकिन बाजार के कानून नहीं मालूम। मामला मामला होता है हाजी साहब, आपने बेच दिया मैंने खरीद लिया। ताजिरों की जबान की इज्जत होती है, लेकिन आपने कल असरत किया और आज टालना चाह रहे हैं।
इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे अच्छा बुरा समझा सको।
मैं आपकी उम्र का एक एक सेकंड लौटाना चाहता हूँ, ये पहला है। मेरा दिल नहीं माना आपका चेक परिचय जैसी घटिया और पस्त औरत के पास रहे, ये दूसरा। मैंने आपके हक में दो मेहरबानी की है जनाब, आप भी थोड़ा इंसाफ से काम लें और उसे कैश करवाएं। मैं परिचय के चेक की बात नहीं करना चाहता था, आपने ही मजबूर कर दिया।
सारा,
सलाम अलैकुम। मैं समझी आप सो रही हैं।
कहाँ थी तुम?
क्या मतलब?
तुमने अपने अब्बू से वादा किया है।
क्या मतलब? यानी मुझे घर से बाहर नहीं जाना
चाहिए।
जानती
हो तुम्हारे अब्बू को पता चला तो क्या करेंगे?
आपको उनकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कहाँ गई थी। मैं यावर की अम्मी की दवाई लेने के लिए गई थी। इस वक्त आपको दिल तकलीफ हो रही होगी ना कि मेरे बारे में गलत फैसला किया।
तो तुम्हारे अब्बू जानते हैं कि तुम बामे तेहरान गई थी? मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी आसानी से झूठ बोलोगी।
आप फातिमा का भी इसी तरह पीछा करती हैं कि वो कहां जाती है और कहां आती है।
बेटी, मैं और तुम्हारे अब्बू परेशान हैं। अरे वो जो लड़का है ना,
समझ में नहीं आता कि आप इतना हंगामा क्यों मचा रही हैं। मेरा मूड ठीक नहीं था, थोड़ा बाहर चली गई थी। इतनी भीड़ में बामे तेहरान जाने में परेशानी की क्या बात है?
बेटी, तुम उम्र के ऐसे मरहले में हो कि तुम्हें अपने रवैये और इंतखाब।
आप सब मेरे टीचर बन गए हैं। अगर मैं ऐसी उम्र हूँ कि मुझे बहुत सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो ऐसी उम्र में भी हूँ जब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। मुझे अपना टीचर खुद होना चाहिए, अपनी जिंदगी के फैसला खुद करना चाहिए।
सारा बेटी, लैला की रूह की कसम, जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर फातिमा होती तो मैं उससे भी यही बातें कहती। अगर उस लड़के की नियत सही।
प्लीज ये बातें अपनी फातिमा से कहें। मैं इस शख्स के बारे में जिसे आप नहीं जानती, आपकी जाती राय सुनना नहीं चाहती।
तो फिर तुम्हारे अब्बू से कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जानना उनका हक है।
मैंने अपने अब्बू की शादी इसलिए कराई कि वो अकेले ना रहे, अपनी जासूसी कराने के लिए नहीं।
मुझे यावर की अम्मी से ज्यादा रेहाना के बारे में तश्वीश है। वो एक सच्ची माँ है जो सबके लिए परेशान होती है और चाहती है कि किसी की भी आकबत खराब ना हो। فاطمہ کی فکر، سارا کی تشویش، حاجی کی حالت، اپنی بیماری، اتنا سارا دباؤ اس کے لیے خطرناک ہے۔
یہ لو۔
واہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
میں ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ تمہیں دینا بھول گیا ہے۔ کل رات سے ڈیش بورڈ میں پڑا ہوا ہے۔
ابو آپ اس صورتحال میں بھی؟
اور اس کی بات بھی مت کرو، حالانکہ تمہارا لائق نہیں ہے۔
واقعا آپ کا بہت بہت شکریہ۔
نیما، ابھی ابو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ابو کو بتائے گی۔
سارا بیٹی، کیا کر رہی ہو؟ آؤ، کھانا تیار ہے۔
اچھا ابو، ابھی آتی ہوں۔
تمہارا سر درد ختم ہوا؟
بہتر ہوں۔
میں نے کہا تھا نا، اگر انسان کچھ دن گھر میں رہ جائے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ اسے تازہ ہوا لگے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔
اصل میں اس لڑکے اور اس کے ارادے اور نیت کی سوچ سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ باتیں کم از کم سارا کو بتا دیں تاکہ وہ اس لڑکے کو صحیح طریقے سے پہچانے؟ بچہ ہے، سمجھتی نہیں، کہیں اس لڑکے سے دل نہ لگا بیٹھے۔
کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں کہ دل میں جو بھی ہے کرتی پھرے؟
اب میں کیا بتاؤں؟
کچھ ہوا ہے؟
نہیں، آپ سے بات کے لیے کہہ رہی ہوں۔
ہاں، آج بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ ڈرگ اسٹور میں ہے، کبھی کہہ رہے تھے کہ چہل قدمی کر رہی ہے، کبھی کسی دوسرے ڈرگ اسٹور میں تھی۔ اتنی دیر میں پہنچی کہ بیچاری یاور کی امی خطرے میں پڑ گئی تھی۔
مجھ سے کہاں فرناز کے پاس جا رہی ہے؟
آج کل میرا دھیان ادھر ادھر اتنا زیادہ ہے کہ رات دن کا بھی مجھے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے۔ تم ذرا مہربانی کر کے اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھو۔
اصل میں کچھ چیزیں میرے بس سے باہر ہیں۔
تم سمجھو کہ وہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔
طنز کر رہے ہیں تو لگتا ہے آپ نے اب تک مجھے پہچانا نہیں ہے۔
نہیں سمجھ رہا ہوں، میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا، معاف کرنا۔
نیا ہے
یہ؟ ابو نے خریدا ہے۔
قسمت ہے تمہاری، اتنی پریشانیوں مسائل میں بھی تمہارا خیال ہے۔
سارا بیٹی، ان حالات میں ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ زحمت کریں۔
ارے میں نے اس کے لیے کوئی گاڑی تو نہیں خریدی، ایک معمولی سا موبائل ہے۔ سارا ایک منٹ رکو، مجھے تم سے کام ہے۔
ابو دیر ہو رہی ہے، فرناز آدھے گھنٹے سے منتظر ہے۔
زیادہ وقت نہیں لگے گا، بیٹھو۔
ارے ابو،
میں نے کہا بیٹھو۔ نیما نے مچھلی کا پلانٹ بھی خرید لیا ہے اور پریچر کا چیک بھی۔ اب وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ جلد از جلد چیک کا پیسہ اسے دوں۔ اگر باہر کا کوئی آدمی میری جڑ کھودنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है वही मेरी जड़ खोदे। बात समझ में आ गई?
अबू, ये सब कुछ आप मुझसे क्यों कह रहे हैं?
ये मैं सबसे कह रहा हूं।
आपकी बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज।
जो हमने तय किया था वो आप इतनी जल्दी भूल गए?
क्या तय किया था?
ये कि हम उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे।
क्या कहें?
हेलो।
वाह वाह, सलाम अलैकुम। आपका मिजाज कैसा है हाजी साहब?
आपकी दुआ से जिंदा हूँ।
खुदा का शुक्र है। हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
आपसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा है, काश आप यहाँ होते।
दिल की बातें तो बीवी से कहनी चाहिए। आप ये बताइए, मसला क्या है?
घरेलू मुश्किलात, और कैसे बताऊं, किस्सा बड़ा तवील है।
घरेलू मसाइल घर में हल करें, एक साथ बैठकर बात करें, सोचें और देखें कि मुश्किल की जड़ क्या है। मसले को जड़ से खत्म करना चाहिए।
ये चीजें जो आप कह रहे हैं मैं खुद भी जानता हूं हाजी साहब, लेकिन इसे हल कैसे किया जाए ये अल्लाह ही जानता है।
उसका हल? सबको अपनी अपनी बात कहने दें। घरेलू मसाइल की जड़ सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। अगर उसे ना रोकें तो कीना बन।
हाजी तवसली सही कह रहे थे, जब कीना बीच में आ जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। हबीब साहब अपने नए घराने को इकट्ठा करके बात करना चाहते हैं, ताकि उन्हें याद आ जाए कि कहां क्या किया है, ताकि शायद आगे आने वाले मसाइल को रोक सकें। लेकिन मैं कहता हूं कि जब इंसानों के दिल में कीना बैठ जाता है तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता।